यशाया अध्याय 16। यशाया के अध्ययन को जारी रखते हुए हम अध्याय 16 खोले। यशाया की भविष्यवाणी के जिन अध्यायों का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसराइल के पड़ोस में अशूर एक शक्तिशाली सैन्य बल बनते जा रहे हैं। अशूर देश, जिसकी राजधानी निनवे थी, अत्यधिक शक्तिशाली बनते जा रहा है और एक दिन वो विश्व को अपने अधीन करने निकल पड़ेगा। यही कारण है कि यशाया विभिन्न राष्ट्रों को संबोधित कर रहा है, जिनमें है मोआब, सीरिया, एप्रेम आदि, क्योंकि ये राष्ट्र मिस्र और इथियोपिया के साथ अशुरों का सामना करेंगे और युद्ध करेंगे। इन अध्यायों के अध्ययन में आपको युद्ध के बादलों का आभास होगा, क्योंकि शीघ्र ही अशूर इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यशाया अशूरों द्वारा इस आने वाले विनाश की चेतावनी इन राष्ट्रों को देता है। वो सबसे पहले मोआब को चेतावनी देता है। मोआब आज जॉर्डन कहलाता है। मोआब यर्दन नदी के पूर्व में गिलाद पर्वत के निकट, वरन सैर पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यशाया अध्याय 16 पद 1। सेला नगर से हाकिम के लिए भेड़ों की बच्चों को भेजो। सेला का अर्थ है चट्टान, जिसे पेत्रा कहते हैं, और इस कारण उस नगर का नाम पेत्रा नगर है, जो मोआब में स्थित था। यशाया अध्याय 16 पद 1 से लेकर 5 तक। जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया लो, रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकले हुए हैं वे मेरे बीच में रहे, नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। इसके बाद वो मोआब के लिए विलाप करता है, क्योंकि वहां के निवासी अभिमानी थे। हमने यशाया की भविष्यवाणी के अध्ययन में ये चर्चा की थी कि भविष्यवाणियों का एक विशेषता ये है कि वे निकट भविष्य में पूरी होती है और साथ ही साथ दूर भविष्य में पूरी होने के लिए भी रहती है। अनेक बाइबल शास्त्री इस पद को, जिसमें परमेश्वर मोआब को आदेश दे रहा है, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं, जो निकाले हुए हैं तेरे बीच में रहे, इस पद को अंतिम 7 वर्ष के मध्य पूरी होने वाली भविष्यवाणी कहते हैं, क्योंकि दानियल 9 अध्याय 24 पद में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यरूशलेम के फिर से बनाए जाने की आज्ञा के निकाले जाने और शांति का राजकुमार मसीहा के आने तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होते हैं। विपत्ति में इसराइल के अनुसार संसार का राजकुमार आकर 70वें सप्ताह में इसराइल के साथ वाचा बांधेगा। ये 7 वर्ष का समय होगा। ये राजकुमार इन 7 वर्षों के बीच में ही वाचा तोड़ देगा और उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु को स्थापित करेगा। यीशु के चेले एक दिन यीशु के पास आए और कहने लगे, प्रभु तेरे आने का और अंत समय का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उन्हें सब चिन्ह और घटनाओं का ब्यौरा दिया जो अंत समय से संबंधित है। उसने ये भी कहा कि दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार जब तुम उस घृणित वस्तु को मंदिर में देखो जो उजाड़ने वाली है, जंगल में भाग जाना। यदि अपने घर की छत पर हो तो कुर्ता लेने भी घर में मत जाना। जितना जल्दी हो सके वहां से भाग लेना। यदि खेत में काम कर रहे हो तो घर मत जाना। जल्दी से जल्दी जंगल में भाग जाना। प्रभु ने उन्हें इस घृणित वस्तु के बारे में चेतावनी दी थी। उसने ये भी कहा था, जिसमें बुद्धि हो वो समझ ले, क्योंकि उसने कहा था कि महाक्लेश का समय आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि योहन्ना ने इन विभिन्न पात्रों को या प्रतीकों को देखा था। उसने एक स्त्री को देखा जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था। उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। वो प्रसव पीड़ा में थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने एक विशाल अजगर को देखा जो इस बच्चे को जन्म लेते ही निगलने के लिए खड़ा था। वो लिखता है कि किस प्रकार वो बच्चा जन्मा और स्वर्ग में अपने सिंहासन पर उठा लिया गया। क्रोध में आकर अजगर ने उस स्त्री के अन्य संतानों से युद्ध करने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने उस स्त्री को उकाब के 2 पंख दिए कि उड़कर जंगल पहुंच जाए, जहां 3.5 वर्ष तक उसकी देखरेख होगी। भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से इन सब बातों का अर्थ है कि परमेश्वर के पास 7 वर्षीय काल चक्र है जो इसराइल में पूरा होना है। यरूशलेम के पुनरुद्धार की आज्ञा के दिन पूरे हो चुके थे। मार्च 14, 445 ईसा पूर्व में अर्थशत्र राजा ने नहमिया को यरूशलेम के पुनरुद्धार का आज्ञा पत्र दिया था और 1,73,880 दिन पश्चात अर्थात 483 वर्ष बाद यीशु ने अप्रैल 6, 32 में यरूशलेम की विजय यात्रा की थी। ये घटना बाबुल के कैलेंडर के अनुसार है, जिसमें 360 दिन का वर्ष होता था। भविष्यवाणी का एक एक अक्षर पूरा हुआ। स्वर्ग दूत ने दानियल से 70 सप्ताह कहे थे। मसीहा का तिरस्कार किया गया, जिसमें उसे क्रूस की मृत्यु दी गई जो हमारे पापों की मेल बलि थी। उसने पाप का अंत कर दिया। ना तो उसने उस समय अनंत राज्य की स्थापना की और ना ही महापवित्र स्थान का अभिषेक किया गया, ना ही सब भविष्यवाणियों की पूर्ति हुई। बची हुई भविष्यवाणियों की पूर्ति 70वें 7 वर्षीय काल चक्र में पूरी होने के विषय यीशु ने कहा था कि ये समय आने वाला है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब तुरंत ही ख्रिस्त विरोधी का उदय होगा। मेरे विचार में ख्रिस्त विरोधी का आगमन कलीसिया के उठाए जाने के साथ ही होगा, क्योंकि लिखा है 2 तिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 पद पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर न हो जाए वो रोके रहेगा। और दूसरा तिसलोनिकियों 2:3 वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा। वो हर प्रकार का झूठ धोखा और कपट लाता है। प्रकाशित वाक्य 4 में आप कलीसिया का स्वर्ग में उठाया जाना देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:1-4-10। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के मुकुट है। पद 10 तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर की सुयोग्यता का वे घोषणा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 में वो सिंहासन पर बैठने वाले के हाथ में 7 मोहर लगी पुस्तक देखता है। उसने स्वर्ग दूत को पुकारते सुना कि इन मोहरों को तोड़ने वाला कौन है। ये पृथ्वी के उत्तराधिकार के कागज थे। इसके योग्य कौन है कि पृथ्वी पर अधिकार करे। उद्धार का दिन आ गया है। इसके योग्य कौन है। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई योग्य पुरुष दिखाई दिया कि उस पुस्तक को ले। परंतु प्राचीनों ने यूहन्ना से कहा मत रो क्योंकि यहूदा के गोत्र का शेर विजयी हुआ है कि उस पुस्तक की मोहरों को खोले। यूहन्ना ने देखा कि वो बलि किए हुए मेमना के सदृश था। उसने आगे बढ़कर उसके दैने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ली और जब उसने वो पुस्तक ली तुरंत 2400 प्राचीनों ने अपने सुनहरे धूप दान लिए जिनमें धूप अर्थात पवित्र जनों की प्रार्थनाएं थी परमेश्वर को चढ़ाते हुए स्तुति गान किया। प्रकाशित वाक्य 5:9-10 तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। स्वर्ग में मुक्ति प्राप्त कलीसिया का स्तुति गान। केवल एक मुक्ति प्राप्त कलीसिया ही इस स्तुति गान को गा सकती है। ये इसराइल का स्तुति गान नहीं है। ये पृथ्वी के समस्त परिवारों के सदस्यों का स्तुति गान है। ये स्वर्ग दूतों का स्तुति गाना नहीं है। ये एक मुक्ति प्राप्त कलीसिया का स्तुति गान है। तूने वध होकर अपने लहू से हमें मुक्ति दिलाई। स्वर्ग दूत इस स्तुति गान को गा नहीं सकते। वे केवल सामूहिक गान गाते हैं। इस प्रकार वे भी स्तुति गान में सहभागी हो गए। करोड़ों और अरबों गायक स्तुति गान में सहभागी थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अध्याय 6 में प्रकाशित वाक्य, अध्याय 6 पद 1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये क्रिस्त विरोधी का दर्शन है। ये मसीह की मोहर खोलने की योग्यता के स्तुति गान के तुरंत बाद होता है। पृथ्वी पर क्रिस्त विरोधी का आगमन, क्रिस्त विरोधी का सबसे पहला काम होगा कि वो रूस के विध्वंसकारी आक्रमण से बर्बाद मध्य एशिया को सवारे, क्योंकि रूस की वहां बहुत बुरी हार होगी। वो वहां पुनरुद्धार का काम आरंभ कर देता है। सबसे पहले वो इसराइल के साथ वाचा बांधेगा। बाइबल में तो ये लिखा नहीं है कि उसकी वाचा में मंदिर का फिर से बनाया जाना भी है। ये मेरा अपना विचार है कि वाचा के अधीन वो इसराइल को मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य प्रदान करेगा। वे ओमर मस्जिद के स्थान पर मंदिर नहीं बनाएंगे। असल में ये डोम ऑफ द रॉक मस्जिद है। मेरे विचार में वे डोम ऑफ द रॉक मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे, परंतु उसकी उत्तरी दिशा में वे एक दीवार बनाएंगे और उन्हें लगभग 15 एकड़ भूमि दी जाएगी कि मंदिर बनाएं। ये स्थान उनके पुरातत्व वैज्ञानिकों के विश्वास में सुलेमान के मंदिर का स्थान है। पिछले वर्ष जून में एक पुरातत्व वैज्ञानिक ने यरूशलेम पोस्ट में एक बड़ा ही रोचक लेख लिखा, जिसमें उसने अपनी खोज द्वारा ये घोषणा की कि सुलेमान का मंदिर डोम ऑफ द रॉक मॉस्क के उत्तर में था। यदि ये सिद्ध हो गया तो यहूदियों के लिए ये वरदानी होगा, क्योंकि वे धर्म युद्ध से बच जाएंगे। इसी के कारण तो संसार के सब मुसलमान उनके विरुद्ध है। वहां एक दीवार खड़ी कर दी जाए तो काम बहुत आसान से हो जाएगा। एहेस्केल की पुस्तक में एक पद जिसमें इस विभाजन का दीवार विषय में बात की गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में परमेश्वर यूहन्ना को एक सरकंडा देता है और कहता है, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। डोम ऑफ द रॉक मॉस्क मंदिर के बाहर के आंगन में स्थित है, जिससे यदि ये सिद्ध होता है कि सुलेमान का मंदिर मस्जिद की उत्तरी दिशा में था। क्रिस्त विरोधी इसराइल के साथ वाचा बांधेगा, परंतु 3.5 वर्ष के बाद वो आएगा और जैसा कि पौलुस 2 तिस्लोनिकियों में लिखता है और जैसा यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में कहा तथा दानियल ने अध्याय 9 में लिखा है, वो इस नव निर्मित मंदिर में खड़ा होकर घोषणा करेगा कि वही परमेश्वर है और वो अपनी उपासना की आज्ञा देगा। यीशु ने कहा था कि ऐसी स्थिति आते ही वे तुरंत जंगल में भाग जाएं, क्योंकि ये पाप का पुरुष क्रिस्त विरोधी आज्ञा देगा कि यहूदी परमेश्वर के स्थान पर उसकी उपासना करें। यद्यपि वे उसे मसीह करार दे चुके थे, उन्हें बोध होगा कि उसने उनसे धोखा किया। यीशु ने कहा था कि ऐसे समय जल्दी से जल्दी जंगल में भाग जाना, घर से कुछ लेने के लिए समय ना लगाना। प्रकाशित वाक्य के अनुसार परमेश्वर उन्हें उकाब के पंख देगा कि वे जंगल में एक ऐसे स्थान पर चले जाए जहां 3.5 वर्ष उनकी देखरेख होगी। ये क्रिस्त विरोधी उनके पीछे सेना भेजेगा, परंतु पृथ्वी फट जाएगी और उसकी सेना दफन हो जाएगी। अब हमें भविष्यवाणी होने वाली प्रतीत होती है। वे जंगल में कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, इसका वर्णन भविष्यवाणी में है। यशया अध्याय 16 पद 1 से लेकर 5 तक। जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों की बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला ख्रिस्त विरोधी नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले ख्रिस्त विरोधी नाश हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक यीशु मसीह विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टिप्पणी देना चाहता हूं। 7 वर्ष के काल चक्र के मध्य जब क्रिस्त विरोधी, जिसे बाइबल अनेक नाम देती है, जैसे पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, पशु, लूटपाट करने वाला, लुटेरा आदि, वो आकर मंदिर में खड़ा होगा। उस दिन से 1290 दिन बाद यीशु फिर से आएगा और अपनी कलीसिया को साथ लेकर आएगा कि पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे। हम घटनाओं के इस अंतिम चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमें लगातार पढ़ने को समाचार मिलता है कि रूस तेल के कारण मध्य एशिया में प्रवेश की धमकी दे रहा है। इस अंतिम घटना चक्र का आरंभ रूस के आगमन से ही होगा। ज्यों ही रूस वहां आएगा, त्यों ही परमेश्वर उसे बुरी तरह हराएगा और उसकी हार का परिणाम ये होगा कि यूरोप के 10 राष्ट्रों का उदय होगा। इन राष्ट्रों में से ही पाप के पुरुष का आगमन होगा। वो इसराइल के साथ वाचा तो बांधेगा, परंतु उसे बीच में ही तोड़ देगा और उनके दैनिक बलिदानों और आराधना को समाप्त करके उन्हें अपनी पूजा करने का आदेश देगा। बस तब 1290 दिन बाद ही मसीह अपनी कलीसिया को लेकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। इस समय यहूदी लोग जंगल की ओर दौड़े। परमेश्वर ने मोआब को आदेश दिया, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें ग्रहण कर, उन्हें अपने पंखों में ओढ़ ले, उनकी रक्षा कर, उन्हें छिपा ले, समय से पहले उनको धोखा ना दे। इस महाक्लेश के समय में जब तक राजा आकर दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठता, तब तक उन्हें ये क्लेश भोगना पड़ेगा। अब वो मोआब की वर्तमान अवस्था के बारे में कहता है कि वो घमंड से भरा है। यशाया अध्याय 16 पद 6। वो अत्यंत अभिमानी था, उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है। अभिमान और गर्व और रोष ये शब्द इब्रानी भाषा में अलग अलग है, परंतु इनका मूल शब्द एक ही है, जैसे डींग मारना, शोकी भगारना, गर्वित आदि एक ही अर्थ रखते हैं। इब्रानी के ये शब्द एक ही मूल शब्द से है और वे मोआब के बड़े घमंड की व्याख्या करते हैं। यशाया अध्याय 16 पद 7, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा, सबके सब मोआब के लिए हां हाकार करेंगे, किर हरासत की दाग की टिक्कियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे। मोआब अंगूर की खेती के लिए मशहूर था, वहां पर अंगूर के बड़े बड़े खेत थे। सब कुछ आक्रमणकारी सैनिकों द्वारा कुचल दिया जाएगा। कोल्हू में अंगूर का रस निकालने के लिए कुछ नहीं रहेगा। वे जब अंगूर को पैरों से कुचलते थे, तब जोश दिलाने के लिए हदाद 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 कहते हुए पैर मारते जाते थे। यशाया कहता है, ये हदाद हदाद सुनाई नहीं देगी, केवल अशूर सैनिकों के चलने की आवाज सुनाई देगी, जो उनकी विजय यात्रा की घोषणा करेगी। ये आनंद की पुकार नहीं होगी, ये अंगूर रौंदने की नहीं, अशूर सेना के चलने की आवाज होगी, जिसके पैरों तले अंगूर के बगीचे रौंदे जाएंगे। यशाया अध्याय 16 पद 13 और 14 में वो कहता है कि मोआब का न्याय 3 वर्ष में किया जाएगा, और सचमुच में 3 वर्ष के भीतर अशूर सेना ने मोआब को जीत लिया। घमंडी मोआब नाश हो गया।